आज है 16 मई दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। चुनाव नतीजे आने के 24 घंटे बाद भी कर्नाटक में असमंजस बरकरार, आरोप प्रत्यारोप जारी। कल फ्लाईओवर हादसे के बाद सरकार के रवैये से नाराज हैं बनारस के लोग।
योगी जी आए, शीशा खोले चले गए, ड्रामा सेंटर रुक के कम से कम 5 मिनट यहाँ समय तो देना चाहिए था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के बाद भारत नेपाल संबंधों में कुछ सुधार होगा।
ओली को ये पता था कि भारत का विकल्प कभी चीन नहीं हो सकता। नेपाल की जनता भी जानते कि भारत का विकल्प चीन नहीं हो सकता।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। बीजेपी 104 सीटों के साथ बहुमत से 8 सीट कम होने के बावजूद सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, तो कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने भी साथ मिलकर दावा पेश किया है। बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, इसलिए उसे पहले मौका मिलना चाहिए, तो कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि उनके पास बहुमत है इसलिए उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि अगर राज्यपाल ने बीजेपी को मौका दिया तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब सबकी निगाहें राज्यपाल पर टिकी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से रमजान के दौरान कोई ऑपरेशन शुरू नहीं करने का आदेश दिया है। मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन नहीं शुरू करने के फैसले से शांतिप्रिय मुसलमानों को रमजान के महीने में एक अच्छा माहौल मुहैया कराने में मदद मिलेगी। हालांकि सुरक्षा बलों को हमले की स्थिति में पलटवार करने का अधिकार रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि वो अमरीकी दबाव के सामने हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान प्रतिबंधों और युद्ध की धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने ये बातें देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर पर अमरीकी प्रतिबंधों के बाद कही हैं। अमरीका ने ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर पर विदेशों में विद्रोहियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। अमरीकी प्रतिबंध पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, हमने कहा कि हम उन्हें एक मौका देने जा रहे हैं। हम परमाणु समझौते के तहत कुछ तय हितों को देख रहे थे और ये हित जगजाहिर हैं। अमेरिका के परमाणु करार खत्म करने के बाद अगर हमारे हित सुरक्षित रहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसे किसी भी तरह के करार तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं तो हम दुनिया से कहना चाहते हैं कि हम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं, हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। किनिया के राष्ट्रपति उहुरु किनियाटा ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है जिसमें ऑनलाइन गलत सूचना साझा करने वालों पर $50,000 का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 2 साल की कैद भी हो सकती है। वहां के पत्रकारों ने इस नए कानून पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी लगाने में दुरुपयोग किया जा सकता है। चीन ने अमरीका और उत्तर कोरिया से आग्रह किया है कि दोनों उदारता दिखाते हुए एक दूसरे से बात करें। चीन ने कहा है कि अगले महीने राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन की प्रस्तावित मुलाकात को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका से बातचीत रद्द करने की धमकी दी है। पूरे मामले पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, सभी पक्षों और खासकर उत्तर कोरिया और अमेरिका को अपने नेताओं की मुलाकात को लेकर आपसी सद्भावना और गंभीरता से काम लेना चाहिए। बातचीत के लिए अच्छा माहौल बनाते हुए सोचना चाहिए कि कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण लंबी अवधि के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हथियार निगरानीकर्ताओं का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरियाई शहर सराकिब में फरवरी महीने में जो हमला हुआ था उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। कर्नाटक में सत्ता का पेंच फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि सत्ता किसके पास जाएगी, 104 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के पास या 116 सीटों वाले कांग्रेस जनता दल एस गठबंधन के पास। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि सबसे ज्यादा विधायक वाली अकेली पार्टी होने के नाते सरकार बनाने के लिए उसे बुलाया जाना चाहिए, और कांग्रेस जेडीएस का कहना है कि उनके पास विधायकों का बहुमत है। अब फैसला राज्यपाल वजूभाई वाला को करना है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए जानते हैं कि बेंगलोर में आज दिन भर क्या क्या हुआ। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जनता दल सेक्युलर के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर नारे लगाकर मांग की कि राज्यपाल वाजूभाई वाला फौरन उनके नेता एचडी कुमार स्वामी को सरकार बनाने का न्योता दें। आज दिन भर राजभवन तक कभी बीजेपी और कभी जेडीएस और कांग्रेस के नेताओं का आना जाना बना रहा, लेकिन शाम होने तक भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि आखिर कर्नाटका में कौन सरकार बनाएगा। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए पहले अपना हक जताया क्योंकि वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ जेडीएस और कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर कहा कि विधायकों का बहुमत उनके पास है। राज्यपाल से मिलने के बाद एचडी कुमार स्वामी ने पत्रकारों से बात की। हम और राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. परमेश्वरा ने राज्यपाल को हमारे 117 विधायकों की तरफ से चिट्ठी दी है। इन चिट्ठियों से ये साबित होता है कि हमारे पास पूरी बहुमत है। ये थे एचडी कुमार स्वामी के शब्द। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बीएस येडियुरप्पा ने भी राज्यपाल से मिलकर कहा कि उनके पास 104 विधायकों का समर्थन है, लेकिन बीजेपी के नेता केएस ईश्वरप्पा ने कहा,
कर्नाटक के लोग माना है इसलिए कर्नाटक में भाजपा का सरकार बना है। देखो, कांग्रेस जेडीएस एक साथ जाने के लिए, ये जेडीएस में भी बहुत लोग को गुस्सा है एमएलए को, और कांग्रेस में भी बहुत लोग को गुस्सा है। वो सभी कांग्रेस वो जेडीएस को ये गठबंधन को लिए तिरस्कार करेगा, वो भाजपा के साथ आएगा।
आपके पास कुछ विधायक है जेडीएस के और कांग्रेस के?
इसके जवाब में कुमार स्वामी ने कहा कि उनको पता है कि उनके थोड़े विधायकों को बीजेपी पैसों का लालच देकर उनके पक्ष को समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। हमारे विधायकों को 100 करोड़ रुपए और कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट देने की आश्वासन दिया जा रहा है। ये कहां से काले पैसे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री? ये थे एचडी कुमार स्वामी के शब्द। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस और जनता दल के विधायकों को शहर के बाहर दो रिसोर्ट को ले जाया गया है। दरअसल जेडीएस और कांग्रेस को डर है कि बीजेपी ऑपरेशन कमला फिर से करेगी जैसे 2008 में किया था बहुमत हासिल करने के लिए। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
नजर के सामने जितना नजर आ रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसकी बहुत चर्चा हो नहीं रही है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बंगलौर में मौजूद हैं और इस समय फ़ोन के ज़रिए हमारे संपर्क में हैं। नितिन, मैं आपसे कतई ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि अंदर जो इनकी गुप्त बातचीत चल रही है उसका हमें जायज़ा आप दें। हम जाहिर सी बात है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये तार जो खींचे जा रहे हैं, कौन किसके पक्ष में खींच रहा है, कौन दावे प्रतिदावे कर रहा है, और ख़ास इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं वहां चल क्या रहा है?
जी देखिए राजेश, दो तीन बातें जो साफ है, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि हर खेमे में बेचैनी का दौर है, ऐसा कोई खेमा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। हम उनके दफ्तर में आज 3 घंटे खड़े रहे हैं, अंदर गए हैं, हमारे कुछ उनके स्थानीय नेताओं से बात हुई है, उनमें भी बेचैनी है। जनता दल एस और कांग्रेस की बेचैनी अभी हमने इमरान कुरैशी साहब की रिपोर्ट में, इस बात की श्योरिटी फिलहाल नहीं है कि वो वाकई में सरकार बना लेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हर पार्टी अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रही है, ज्यादातर तीनों पार्टियों के हाईकमान से आदेश आ चुके हैं नेताओं को, जो कद्दावर नेता दिल्ली से आए हैं, अगर हम मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो भी मीडिया से फॉर्मली ऑन द रिकॉर्ड बात करने से कतरा रहे हैं।
हाँ, ये तो कतराएंगे, ये अभी हाँ, क्योंकि नाजुक स्थिति है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि घोड़ों की खरीद फरोख्त, अगर अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए, हॉर्स ट्रेडिंग, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। कुछ आरोप लग रहे हैं कि 100 करोड़ ऑफर किया, कोई कह रहा है कि नहीं साहब वो हमारे सब विधायक साथ हैं।
दरअसल ये कल दोपहर से ही स्थिति जो है साफ हो गई थी कि अब जो है सरकार बनाएगा कौन, ये मुद्दा दूसरा है, बनेगी कैसे ये मुद्दा पहला है, और उसी की सारी कवायद है। दो रिजॉर्ट्स हैं यहाँ बेंगलोर में, हिल्टन रिजॉर्ट, जहां पर अहमद पटेल साहब एक बार 44 विधायक गुजरात के लेकर पहुंचे थे जब राज्यसभा चुनाव का मामला था, वहां पर विधायकों को ले जाने की बात आ रही है, एक और रिजॉर्ट में ले जाने की बात आ रही है। जेडीएस के कुमारस्वामी कह रहे हैं कि साहब हम अभी अपने विधायकों को लेके नहीं जाएंगे, हम पहले परेड कराएंगे और हम अभी उनको लेके काफी निश्चिंत है। भाजपा कहती है साहब हम हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन नहीं करते, लेकिन दरअसल हर पार्टी इस वक्त इसी कश्मकश में है कि वो सरकार कैसे बना ले, 112 के जादुई आंकड़े पर कैसे पहुंचे। अब जैसा कि आपने कहा भी था अभी, वाजुभाई वाला को ये देखना है कि वो संविधान के किस प्रेसिडेंस को कोट करते वक्त अपना फैसला लेंगे और किसको बुलाते हैं, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं चाहे वो येदियुरप्पा उनको बुलाते हैं, या एक ऐसा कोएलिशन जो कह रहा है कि हमारे पास पूरे नंबर है फ्लोर पर टेस्ट करने के।
अच्छा, बस 30 सेकंड में बताइए कि रातों रात कुछ पासा पलट सकता है, क्योंकि अभी रात बाकी है और बात भी बाकी है, आपको क्या लग रहा है?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि पासा पलट सकता है और हो सकता है कि कल सुबह राज्यपाल की तरफ से भी कुछ उम्मीद हो, कुछ ज्यादा अनाउंसमेंट हो, और ये भी हो सकता है कि किसी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट हो। जैसे भी कुछ होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रुख किसी रिजॉर्ट की तरफ ही होगा, चाहे वो देर रात ही हो।
बहुत बहुत धन्यवाद नितिन श्रीवास्तव, आप फिलहाल रात को सोएं आराम से। ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में कल एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजन और स्थानीय निवासियों में गुस्सा है। ये हादसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में हुआ, हालांकि हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की और योगी बनारस पहुंचे भी, फिर भी स्थानीय लोग इतने भर से संतुष्ट नहीं हुए हैं। आप जानते ही हैं कि सड़क पर ट्रैफिक जैम था और अचानक ऊपर से सैकड़ों टन भारी सीमेंट का मोटा स्लैब नीचे गिर पड़ा। नीचे चल रही कारें और दूसरी गाड़ियां टिन के डिब्बों की तरह पिचक गई और कई लोगों की मौत हो गई। BBC संवाददाता विनीत खरे बनारस पहुंचे हुए हैं, उन्होंने वहीं कुछ स्थानीय लोगों से बात की।
हम इस वक्त हैं बनारस का जो कैंट रेलवे स्टेशन है वहां उसके पास में, जहां पर यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है जो आधिकारिक तौर पर बताई जा रही है।
लोकल लोग कह रहे हैं 100 के आसपास है।
पहले बताइए यहाँ पर किसी ने देखा क्या हुआ या पर घटना के बाद आया हो? क्या नाम है आपका?
मनीष द्विवेदी मेरा नाम है।
मनीष जी क्या देखा
सर? हम लोग कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, बगल में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक बहुत तेज आवाज आया तो हम लोग भागे भागे आए तो देखे कि लाइन से जो पिलर है पूरे गाड़ी के ऊपर गिरा था। लाइन से 4-5 बोलेरो, एक मिनी बस, एक कार और बहुत सारे 2 ऑटो, बाइक वाले और साइकिल वाले सब दबे हुए हैं अंदर। लोग चिल्ला रहे हैं चारों तरफ मदद के लिए, लेकिन हम लोग जितना हो सके कर रहे थे, लेकिन इतना भारी है कि कुछ हो नहीं पा रहा था। गाड़ी तोड़ा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा पा रहा है, लोग मर रहे हैं। प्रशासन एक घंटा बाद आया।
तो मनीष, जैसे कि मुझे दिख रहा है ये ऊपर बीम्स लगी हुई हैं और ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो बीम क्या, एक बीम लेफ्ट की तरफ गिरी है, बाएं तरफ गिरी है, एक दाएं तरफ गिरी है, कुछ इस तरह का हुआ है?
दूसरा वाला
भारी बीम है, सीमेंट की बिल्कुल है ना?
सर 2000 क्विंटल का सर ये है। ये दूसरा नंबर वाला जो पिलर है, पहले वो गिरा, उसके बाद से ढकेलते हुए उसको साइड वाला गिर गया और लाइन सारी गाड़ियां जितनी जाम में फंसी थी उसके ऊपर दब गई सारी।
और यहाँ पर अभी कुछ पुलिस वाले हैं, क्रेन्स भी हैं, लेकिन लोग इकट्ठा हैं और अभी भी मतलब ये सेफ नहीं है जगह, है ना?
नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है।
यहाँ पे चलता रहता है ऊपर से जितने मजदूर हैं, बड़ा
बड़ा इस पुल का कोई जरूरत ही नहीं था। सही मायने में इस पुल का कोई जरूरत नहीं था।
मुझे बताइए ये मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या उम्मीदें हैं उनसे? कल उन्होंने दुख जताया है कि जो कुछ आज घटना हुई है जिसमें लोगों की मौत हुई है।
फालतू का दुख जताया, जो योगी जी आए सीसा खोले चले गए, ड्रामा सेंटर रुक के कम से कम 5 मिनट यहाँ समय तो देना चाहिए था।
जनता से बात करना चाहिए, गरीब लोग हैं सर।
किनसे है, कौन मरा, किसके घर का मरा, कोई मतलब नहीं है।
आदमी मरे हैं उनकी संख्या बताई सही सही जाए और उनको पूरी मदद दी जाए, आर्थिक जितनी मदद हो सके दे दिया जाए। और जितने
5 लाख का
क्या होगा?
और अभी लेकिन राज बब्बर आए थे यहाँ पे कांग्रेस नेता, वो 50 लाख की बात करके गए।
50 लाख बोलने से थोड़ी मिल जाएगा, उनको तो अपना पार्टी का नाम लेना है। 50 लाख बोलने से थोड़ी जाएगा, वो अपना पार्टी रहता वो खुद नहीं बोलते कि 50 लाख देना। 50 लाख कितने लोग को देंगे?
अभी 5 लाख बोले वही मिल जाए बहुत है भाई साहब।
अरे 25 लाख तो एक जमाने से आ रहा है अकाउंट में भाई,
एक जमाने नहीं तोला जा सकता है। लेकिन एक घटना नहीं होता अगर ऐसा लापरवाही नहीं बरता जाता।
ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
ये थे बनारस से विनीत खरे। और BBC हिंदी सेवा में अब एक खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अफगानिस्तान में फराह प्रांत के गवर्नर ने दावा किया है कि पिछले 2 दिन के दौरान हुई जबरदस्त जंग में तालिबान के 300 लड़ाकों को मार डाला गया है, जबकि सुरक्षा बलों के जवान भी मारे गए हैं। लेकिन गवर्नर बसीर सलांगी के इस दावे पर गंभीर सवाल भी उठे हैं। मैंने कुछ ही देर पहले काबुल में बीबीसी पश्तो के संवाददाता सईद अनवर से फोन पे बात की और पूछा कि गवर्नर के दावे में कितना दम है।
आज अफरा के गवर्नर ने कहा कि इस लड़ाई में 300 तालिबान मारे गए हैं, 25 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं और 5 आम शहरी इस हमले में मारे गए हैं। ये तो सूबे फरा के गवर्नर की बात है, लेकिन हमने सूबे फरा के सिविलियन हॉस्पिटल और हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड के साथ बात की। उनका कहना था कि 29 डेड बॉडीज अस्पताल पहुंच दी गई है, जिसमें 4 आम शहरी है और 25 मिलिट्री पर्सनल है। और अस्पताल हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिन में 74 वुंडेड पीपल, जो 74 लोग जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 20 आम शहरी हैं, 3 महिलाओं समेत, वो भी जख्मी अस्पताल में पहुंच दी गई है।
जिस तरह की जंग हुई थी आपने बताया कि वो शहर के गलियों में लड़ी गई, उसका थोड़ा मंजर कशी कीजिए। ये कैसे होता है कि रात को आते हैं, पूरा भरा पूरा शहर है, लोग मोहल्ले में रहते हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, हमारे जो सामईन हैं, सुनने वाले हैं, उनको बताइए।
तालिबान ने हमले रात के वक्त शुरू किया, उस वक्त लोग या तो सो रहे थे या अपने घरों में थे, लेकिन जो तस्वीर दिन के वक्त सोशल मीडिया में गर्दिश करता नजर आया, उसमें देखा जाता है कि तालिबान के मुसल्लह अफराद गली कोचों में है और कुछ सिक्योरिटी पोस्टों को उन्हें रॉकेट से उन्होंने निशाना बनाया है। दिन के वक्त और भी तस्वीर सूबे फरा से सामने आई, जिसमें दिखाया जाता है कि लोग, कुछ लोग बहुत कम शहर से निकल रहे हैं। जिन सिविलियन लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मर्द और बच्चे और औरतें बेसमेंट में छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकलते डर के मारे, क्योंकि लड़ाई है और रॉकेट लॉन्चर्स फायर होती है, दूसरी जानब हवाई बमबारी है। तो ज्यादातर आम शहरी दिन के वक्त जब लड़ाई था तो या तो बेसमेंट में थे या घर से नहीं निकल सकते थे, बहुत कम लोग वो कर सके कि शहर से बाहर निकले। अब फरा शहर की कंट्रोल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में है, ताजादम सिक्योरिटी दस्ते भी हेरात और कंदहार से फरा शहर पहुंच चुके हैं। तालिबान ने भी एक बयान जारी करते हुए तस्दीक किया है कि उन्होंने उनके अफराद या जंगजू शहर से विड्रॉ कर चुके हैं।
अब ये आखिर में ये भी बताइए कि वो 300 लोगों की कोई बॉडी हुकूमत ने दिखाई है क्या, उनके शव, उनकी लाशें कहीं दिखी हैं?
हुकूमत ने ऐसी तस्वीर या वीडियोस तो जारी नहीं किया है जिसमें तालिबान की डेड बॉडीज दिखाया गया हो, लेकिन इस तरह की लड़ाइयों में, खासकर जब बमबारी होती है, तो तालिबान या मुखालिफिन की कैजुअलिटीज में भी इजाफा होता है।
ये थे काबुल से बीबीसी पश्तो के संवाददाता सईद अनवर। ये बीबीसी पिछले हफ्ते कर्नाटक में जिस वक्त मतदाता विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाल रहे थे, ऐन उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के जनकपुर पहुंचकर नौलखा मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने जनकपुर से अयोध्या तक की तीर्थयात्रा के लिए बस सेवा शुरू करने की घोषणा भी की। इसे प्रधानमंत्री की निजी यात्रा बताया गया। ये बात छिपी नहीं है कि 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद से नेपाल और भारत के संबंधों में खिंचाव सा गया है। क्या प्रधानमंत्री की ये कोशिशें पड़ोसियों से भारत के संबंधों में आई खटास को दूर कर पाएंगी? हमारे साथी आदर्श राठौड़ ने दुनिया जहान में यही पड़ताल की है।
दुनिया जहां,
जिस प्रकार पर्वतारोहियों को नेपाल के शेरपाओं का मजबूत साथ और समर्थन मिलता है, उसी प्रकार नेपाल की इस विकास यात्रा में भारत आपके लिए शेरपा का काम करने के लिए तैयार
है। ये शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो उन्होंने हाल ही में नेपाल यात्रा के दौरान काठमांडू में कहे। 2 दिन की यात्रा के दौरान वो नेपाल के जानकी मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर भी गए। जानकी मंदिर में तो उन्होंने भजन कीर्तन कर रहे लोगों के साथ मंजीरा भी बजाया। इस यात्रा के दौरान इस तरह की चर्चा सुनाई दी कि नरेंद्र मोदी का यह दौरा सांस्कृतिक था, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे बताते हैं कि इस यात्रा के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि सुधारने की भी कोशिश की और भारत नेपाल रिश्तों को बेहतर करने का भी प्रयास किया।
नेपाल में जो दो साल पहले की तीन साल पहले की इकोनॉमिक मार्केट था, उसके बाद से नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमेज पर काफी गिरावट आ गया था। मुझे लगता है कि पहला उनका मकसद ये था उस इमेज को, पर्सनल इमेज को नेपाल में थोड़ा लोकप्रियता दी। दूसरा एक जो आलोचना मोदी सरकार का हो रहा है कि दक्षिण एशिया के सभी पड़ोसी मुल्क में भारत ने अपना जो हैसियत था उसको गवाया, वो सभी मुल्क चाइना के नजदीक हो रहे, उनको वापस किसी तरह इंडिया के साथ नजदीक लाने की कोशिश है।
लेकिन सवाल उठता है कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए जो भारतीय प्रधानमंत्री को बार बार भारत और नेपाल के पुराने और ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलानी पड़ी।
और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था।
नेपाल मामलों के जानकार आनंद स्वरूप वर्मा बताते हैं कि इसके लिए भारत की भी कुछ गलतियां जिम्मेदार हैं।
अब देखिए, नेपाल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अच्छा, एक तरफ से चीन से घिरा है और चीन का जो रास्ता है वो बहुत दुर्गम है, ये भारत भी जानता है और नेपाल के शासक भी इसको जानते हैं। अगर भारत से उसको दिक्कत पैदा होती है तो निश्चित तौर से वह चीन की तरफ मुखातिब होगा। और यही हुआ था जिस समय नाकाबंदी हुई, नाकाबंदी के 20 दिन बाद चीन की तरफ उसने हाथ बढ़ाया पेट्रोल के लिए। और यह जानते हुए उस समय ओली की सरकार थी, जो आज भी प्रधानमंत्री हैं, ओली को ये पता था कि भारत का विकल्प कभी चीन नहीं हो सकता। नेपाल की जनता भी ये जानते हैं कि भारत का विकल्प चीन नहीं हो सकता, लेकिन चीन के साथ भी अगर वो मदद ना मांगे तब तो वहाँ की जनता भूखों मर जाती, और निश्चित तौर से चीन के लिए तो एक अच्छा अवसर था।
नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भी मानते हैं कि 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद से नेपाल को विचार करना पड़ा है कि फिर वैसी नौबत आने पर एक विकल्प तो होना ही चाहिए।
स्पेशली नाकेबंदी के बाद नेपाल ने लगी थी कि इंडिया के साथ ही केवल ट्रेड और ट्रांजिट के लिए डिपेंड करना मुश्किल है, इस तरह की सिचुएशन आने पर हमको वैकल्पिक मार्ग मिलता है। उस हिसाब से नेपाल की जनता खुश है और इसमें चाहे ओली सरकार हो चाहे दूसरा कोई सरकार हो, वो सरकार को समर्थन उन्होंने किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में नेपाल सबसे पहले आता है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा बताते हैं कि भारत के शासक वर्ग की औपनिवेशिक मानसिकता के कारण ही पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते अच्छे नहीं।
ऐसा नहीं है कि भूटान के साथ बहुत अच्छे संबंध जो दिखाई देते हैं, ये संबंध भूटान की मजबूरी की वजह से है। भूटान इस सीमा तक इनके एट पर निर्भर है कि वह चाहते हुए बहुत चीजों पर विरोध नहीं कर पाता है, लेकिन भूटान की जनता इसको अच्छी तरह महसूस करती है और बाकी सारे देशों के साथ इनके संबंध वैसे ही हैं।
भूटान ही नहीं, नेपाल में भी इस बात को लेकर चिंता रहती है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे बताते हैं कि आखिर नेपाल में भारत की किस बात को लेकर नाराजगी है।
देखिए, नेपाल की जनता मतलब यहाँ गरीबी हो सकता है, पिछड़ापन हो सकता है, लेकिन वो अपने जो स्वतंत्र हैसियत रहा है, कभी किसी का उपनिवेश न बना है, उसमें गर्व करता है एक साधारण नेपाली भी। और उस चीज को जब तक कोई मुल्क या इंडिया हो और कोई मुल्क एक थोड़ा अंडरमाइन करते हैं तो यहाँ वो आक्रोश आता है। खासतौर से 2006 के बाद इंडिया ने नेपाल के आंतरिक राजनीति में जिस तरह से संलग्न होने की कोशिश कर रहा है रेडिकल एजेंडा के साथ, इस तरह का फीलिंग है।
भारत, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों का भरोसा और दिल किस तरह से जीत सकता है? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा बताते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए।
मेरा ये मानना है कि भारत कुछ न करे, कम से कम उन पड़ोसियों ये नेपाल की जनता के प्रति एक सम्मान का प्रदर्शन करे। और इसके लिए कि जितने भी चेक पोस्ट है ना इंडिया और नेपाल के बीच में, उन चेक पोस्ट पर कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दे कि वहाँ कोई नेपाली अपमानित ना हो। हम भारत के लोग जो हैं, हमारी संप्रभुता नेपाल के या भूटान के छोटे देश के लोगों के संप्रभुता से बड़ी है, यह भावना अगर हम दिमाग से निकाल देंगे तब निश्चित तौर से नेपाली जनता के साथ एक सद्भावपूर्ण संबंध कायम हो सकेगा।
और शायद यही कारण है कि काठमांडू में प्रधानमंत्री को जोर देकर कहना पड़ा कि भारत नेपाल का सहयोग तो करेगा मगर नेपाल की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर।
ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, नेपाल अपनी प्राथमिकता और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़े। आपकी सफलता के लिए भारत हमेशा नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा।
वरिष्ठ पत्रकार युवराज मानते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की, उस तरह की यात्राओं से सकारात्मक माहौल तो बनता है, लेकिन असल मुद्दों पर बात करना भी जरूरी है। क्या भारत को पड़ोसी देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता होनी चाहिए? इस पर आनंद स्वरूप वर्मा कहते हैं,
अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की किसी से राइवलरी है तो वो अमेरिका से है, और अगर भारत के प्रति चीन की कहीं कटुता दिखाई देती है तो महज इसलिए कि भारत की जो अमेरिका के साथ जूनियर पार्टनर बन के वो घूमता रहता है, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अगर नेपाल चीन की तरफ मुखातिब होता है तो यह भी भारत की जो नेपाल नीति है उसकी विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।
जानकारों का मानना है कि भारत अपने पड़ोसी देशों का भरोसा तभी जीत सकता है जब वो उनसे किए गए वादों को पूरा करे और उन देशों को उसी रूप में स्वीकार करे जैसे वे हैं, यानी स्वतंत्र और संप्रभु पड़ोसी राष्ट्र, और यही उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का आधार होना चाहिए।
उम्मीद है दुनिया जहान का ये अंक आपको पसंद आया होगा। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। भारत में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग के क्वालिफायर्स शुरू होंगे 22 मई से। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो सबसे आगे है सनराइजर्स हैदराबाद, फिर चेन्नई सुपर किंग्स, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर राजस्थान रॉयल्स। पांचवें स्थान पर है किंग्स इलेवन पंजाब और छठे स्थान पर मुंबई इंडियंस। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ही तय होगा वो कौन सी टीम्स हैं जो जाएंगी क्वालिफायर स्टेज तक, और पॉइंट्स टेबल में बेशक आगे है मुंबई इंडियंस से किंग्स इलेवन पंजाब, लेकिन टॉप फोर में नहीं है, और आज जो मुकाबला होने वाला है उसमें प्रेशर हो सकता है किंग्स इलेवन पंजाब पर। ऐसा कहना है पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया का।
मुझे लगता है कि किंग्स थोड़ी सी चिंता में होगी, पिछले कुछ जैसे मैच उनके रहे हैं, प्रेशर आ गया उनके ऊपर, क्योंकि जब आप इतना पास होते हैं और फिर लगता है कि एक आध मैच अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो उस स्टेज में है। अगर किसी कैंप के अंदर टेंशन होगी तो वो किंग्स इलेवन के कैंप में होगी।
तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो खराब फॉर्म से जूझ रही किंग्स इलेवन पंजाब और मेजबान मुंबई इंडियंस के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। दोनों ही टीम्स के लिए टूर्नामेंट में अपना अस्तित्व बचाने का ये आखिरी मौका होगा। क्रिकेट लीग से चलते हैं फुटबॉल लीग की ओर। यूरोपा लीग के फाइनल्स में आज मुकाबला होगा मार्सेल का एटलेटिको मैड्रिड के साथ। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और खेल समाचारों के बाद चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से रमजान के दौरान कोई ऑपरेशन शुरू नहीं करने का आदेश दिया है। जापानी संसद ने चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विधेयक पास किया है। इस नए विधेयक में राजनीतिक पार्टियों से कहा गया है कि वो पुरुषों के समान महिला उम्मीदवार भी उतारें। पिछले दो सालों में पहली बार जापानी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि गिरावट अस्थायी है और जापान जल्द ही तेजी हासिल कर लेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि वो अमेरिकी दबाव के सामने हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान प्रतिबंधों और युद्ध की धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही फिलहाल ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इसका तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने और फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की गुरप्रीत कौर ने। अब मैं राजेश जोशी अपने सभी साथियों की ओर से आपसे विदा चाहता हूं। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।